नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 334 रन का लक्ष्य दिया। उसने 50 ओवर में 5 विकेट पर 333 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का ये सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर है। यही नहीं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। भारत को स्कोर तक पहुंचाने में कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन दियोल और स्मृति मंधाना की अहम भूमिका रही। हरमनप्रीत कौर ने अपना 5वां वनडे शतक लगाया। वह 18 चौके और 4 छक्के के मदद से 111 गेंद में 143 रन बनाकर नाबाद रहे। हरमनप्रीत कौर ने 100 गेंद में अपना शतक पूरा किया था। हरमनप्रीत कौर ने 12 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद में 43 रन ठोक दिए। भारतीय महिला टीम ने आखिरी के 3 ओवर में 62 रन बटोरे और 1 भी विकेट नहीं गवाया। सीरीज का पहला वनडे भारत ने 7 विकेट से जीता था। हरमनप्रीत कौर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली भारतीय महिलाओं में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने स्मृति मंधाना की बराबरी की। मंधाना ने अपने अब तक के वनडे करियर में 5 शतक लगाए हैं। इस मामले में शीर्ष पर मिताली राज हैं। भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने बुधवार 21 सितंबर 2022 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को पछाड़ दिया। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंच गए। सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 25 गेंद में 46 रन बनाए थे। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 7 चौके और 5 छक्के की मदद से 30 गेंद में 71 रन की नाबाद पारी खेली। उन्हें ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ा। हार्दिक पांड्या के 180 जबकि मैक्सवेल के 177 रेटिंग अंक हैं। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन शीर्ष पर हैं। उनके 248 रेटिंग अंक हैं। इस रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी दूसरे, इंग्लैंड के मोइन अली तीसरे और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 4थे नंबर पर हैं। हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी रैंकिंग में भी 22 स्थान की छलांग लगाई है। वह अब 65वें स्थान पर पहुँच गए हैं। करेबियन प्रीमियर लीग के 25वें मैच में प्रीति जिंटा के सह मालिकाना हक वाली पंजाब किंग्स के बैटिंग ऑलराउंडर ओडियन स्मिथ, IPL 2019 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे कीमो पॉल और विकेटकीपर बल्लेबाज शाय होप के कारण करेबियाई ओपनर ब्रेंडन किंग के तूफानी शतक पर पानी फिर गया। ओडियन स्मिथ और कीमो पॉल ने 25 गेंद में 74 रन की साझेदारी की। उनकी साझेदारी की मदद से गुआना अमेजन वॉरियर ने इस सीजन 11 दिन बाद जीत का स्वाद चखा। शिमरॉन हेटमार की अगुवाई वाली गुआना अमेजन वॉरियर्स ने रोवमैन पॉवेल की जमैका तलवाहिस को 12 रन से हराया। शिमरॉन हेटमायर IPL में कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। वह 2022 सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले थे। भारत के किशोर ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानानंदा ने प्रारंभिक चरण में क्रमशः 2रे और 4थे स्थान पर रहकर जूलियस बैरियर जनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन प्रारंभिक चरण में 34 अंक लेकर पहले स्थान पर रहे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे एरिगेसी के 25 अंक थे। अमेरिका के हैंस नीमन ने 24 अंकों के साथ 3रा स्थान हासिल किया। टूर्नामेंट के पहले दिन 3 जीत से शानदार शुरुआत करने वाले प्रज्ञानानंदा ने 23 अंक हासिल किए। उन्होंने 5 बाजियां जीती, 8 बाजियां ड्रॉ खेली, जबकि 2 बाजियों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कार्लसन ने आखिरी में शानदार फॉर्म दिखाई और 5 बाजियां जीती। उन्होंने कुल 10 बाजियों में जीत हासिल की। एरिगेसी के लिए आखिरी दिन अच्छा नहीं रहा। उन्हें 2 बाजियों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 1 बाजी उन्होंने ड्रॉ खेली। इसके बाद वह 2रा स्थान हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने कुल 7 बाजियों में जीत दर्ज की थी, जबकि 4 बाजियां ड्रॉ खेली थी। इस बीच 4 बाजियों में उन्हें हार भी मिली थी। बी अदिबान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 3रे भारतीय थे। वह 16वें स्थान पर रहे। उन्होंने केवल 10 अंक बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री स्टार स्पोर्ट्स की मौजूदा ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा, यदि आप पिछली सभी शीर्ष भारतीय टीम को देखें तो उनमें युवा और अनुभव का अच्छा मिश्रण रहा है, लेकिन मौजूदा टीम में मुझे युवा गायब दिख रहे हैं। इस कमी का असर क्षेत्र रक्षण पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, अगर आप पिछले 5 से 6 साल को देखें तो मुझे लगता है कि क्षेत्र रक्षण के मामले में ये टीम शीर्ष टीम में से किसी को भी टक्कर नहीं दे सकती। यह कमी बड़े टूर्नामेंट्स में काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह के निर्देशन की जिम्मेदारी फ्रांसीसी थिएटर निर्देशक थॉमस जॉली को सौंपी है। कलात्मक निर्देशक जॉली 26 जुलाई 2024 को फ्रांस की राजधानी में सीन नदी के किनारे स्थित सिटी सेंटर में होने वाले उद्घाटन समारोह का निर्देशन करेंगे। पेरिस आयोजन समिति के प्रमुख ने कहा कि जॉली नए मानदंड स्थापित करना चाहते हैं और वह इस विशेष कार्यक्रम के लिए बेजोड़ कलात्मक अवधारणाओं की कल्पना करने में सक्षम होंगे। जॉली इसके बाद स्टेड डी फ्रांस में होने वाले समापन समारोह तथा पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का भी निर्देशन करेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।